खुदावन खुदा वफादार खुदा है। हालात जैसे भी हो, खुदावन खुदा कभी भी बनी हुई इंसान के साथ बेवफाई नहीं करता। बहुत दफा ऐसा लगता है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, जैसे हालात का हम सामना कर रहे होते हैं, बहुत दफा ऐसा महसूस होता है कि वो हमसे दूर है, और इस वजह से हम अपने दिलों में शक पैदा करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले अमेरिका का एक मुल्क, एक रियासत है, उसे पेंसिल्वेनिया कहते हैं, तो वहां पर मुझे दावत दी गई कि जी आप आकर हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वहां पर 7 दिन का कैंप लगेगा, आप आए और वहां पर आकर क्या सुनाएं जी, कलाम सुनाएं। मैंने उस दावत को कबूल किया और मैं उस सफर के लिए रवाना हुआ। जब सफर के लिए रवाना हुआ तो पहला जो जहाज पकड़ा वो काफी बड़ा जहाज था, जिसमें 350 के लगभग लोग बैठते थे। तो मैं जहाज से उतरकर जो नया जहाज पकड़ना था, वो जहाज छोटा जहाज था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 लोगों के बैठने की जगह थी, बड़ा छोटा सा वो जहाज था। तो जब मैं उस एयरपोर्ट पर पहुंचा, उस जहाज को देखा और वक्त आया कि उसमें बैठा जाए, तो बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ऐसा हुआ माहौल कि इतनी काली घटाएं छा गईं कि अंधेरा मालूम होना शुरू हो गया। और जैसे ही वक्त आया कि जहाज उड़ाया जाए, बारिश के साथ साथ 8,000 फुट के ऊपर जो जमीन से बिजलियां गड़कना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, जब जहाज को उन्होंने उड़ाया तो जो मामूल के मुताबिक जहाज उड़ता है वो जमीन से 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ाया जाता है, लेकिन ये छोटा जहाज मौसम की खराबी के बाइस, मैं महसूस कर सकता था कि बाहर जब बारिश की बूंदे उस पर पड़ रही थी, उसका शोर और बिजलियां जब गड़क रही थी, तो जहाज ऐसे हिल रहा था कि जैसे अभी ये गिर जाएगा। तो बड़ा गमगीन कह सकते हैं कि माहौल है, सारे खामोशी से बैठे हैं और मैं बुलंद आवाज से उन 15-16 लोगों के साथ ये बात कर रहा हूं, और मैंने कहा कि खुदावन खुदा आज ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं इस इलाके में खिदमत करने को जा रहा हूं, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा, ठीक जैसे तूने यूना नबी को नैनवा शहर को भेजा और वो तरसीस को जा रहा था और पानी में वो समंदर का जो बेड़ा वो जहाज था, ठीक वैसे ही मौजे उठ रही थी, बारिश तेज थी और सब घबराए हुए थे कि क्या होगा। और ऐसा माहौल था कि मैं ये दुआ कर रहा हूं, ये सोच रहा हूं, क्योंकि वो जहाज 30 फुट की बुलंदी की बजाय कितने फुट पर उड़ रहा था, 8,000 फुट की बुलंदी पर, जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो बारिश तेज हो रही है, बिजलियां गड़ रही है, मुझे अंदर बैठे हुए महसूस हो रहा है और मैंने ये दुआ करना शुरू कर दी, लगता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, खुदा की मर्जी नहीं थी इस इलाके में, इस रियासत में जाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आ गया। खुदावंद अगर मैं तेरी मर्जी को पूरा करने की बजाय गलत जगह पर जा रहा हूं, तो खुदावंद ये कैसा तजर्बा होगा कि 8,000 फुट की बुलंदी से जहाज नीचे गिरकर तबाह हो। तो मैंने दुआ करना शुरू कर दी और ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे खुदावंद ने मेरे लिए जाल बिछाया है कि वो मेरा सफर खत्म करने को है। ऐसे जहन में चल रहा था कि आज की रात क्या है, आखिरी रात है और ये जहाज उस मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। ईमानदारी से कहूंगा, मैं घबराया हुआ था, परेशान था, सोच रहा था कि इसमें खुदावंद तेरी मर्जी क्या है, तो आज आपको बताना चाहता हूं जिस वाक्य को हम पढ़ने वाले हैं उस वाक्य को पढ़ने से आज आपकी जिंदगी में जो तूफान उठा हुआ है वो तूफान किसी के अजीज को खो जाने का हो सकता है या फिर घर में खुशहाली की फरावानी नहीं उस बात का हो सकता है। घर में कोई ऐसा फैसला है जो आपने किया है और आप सोच रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है क्या होगा। सो मेरे साथ निकाले आज लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका आठवां बाब उसकी 22वीं आयत से आपके लिए मैं 32वीं आयत से आपके लिए मैं सॉरी 22वीं आयत से 29वीं आयत तक का ये वाक्या पढ़ूंगा। 22वीं आयत से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील। यहां पर क्या हुआ है? यीशु तूफान को थामा देता है। वो उस तूफान का जो सामना है उसे क्या करता है? डांटता है। तो क्या हुआ? फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरती जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि ऐ साहिब साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहां गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। इस वाक्य को पढ़ते हैं तो जो वाक्य मैंने आपको बताया मैं डरा हुआ था परेशान था घबराया हुआ था कि आज 8000 फुट की बुलंदी पर ये जो तैयारा उड़ रहा है ये लाजमी नीचे गिरेगा और ये मेरा आखिरी सफर होगा। और ऐसे महसूस हो रहा था ठीक जैसे यहां पर शागिर्दों के जहन में चल रहा होगा यीशु ने कहा आओ चले उस झील के पार। बहुत दफा हम अपनी जिंदगी में जैसे शागिर्द यहां पर सोच रहे हैं कि यीशु ने हमें कहा है कि झील के पार चलें और हमें इस तूफान का सामना है। तो पहली बात मैं आप सबकी तवज्जो याद दिलाना चाहता हूं इस पर हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा ये सोचते हैं कि खुदावन खुदा ने हमारे लिए कोई चाल तो नहीं बिछाया। ये बीमारी ये मुश्किल ये दुख ये परेशानी ये बदहाली ये तमाम मुश्किल जो हम पर आई है ये खुदावन ने क्यों हम पर आने दी? क्यों हम इस दुख का सामना कर रहे हैं? हम सोचते हैं भाई मनीर के घर वालों ने सोचा होगा कि खुदावन इसके पीछे तेरी क्या मर्जी है, क्या उसका वक्त आ गया है कि वो यहां तक हो चुका है कि अस्पताल पहुंच गया है। कुछ कह सकते हफ्ता नहीं हुआ हमारे घर में कैसा माहौल था यही कि जवान बेटा उसके पीछे उसकी बीवी की और माँ की और दूसरे अजीजों की क्या सोचती कि तू इसमें से क्या करेगा। बहुत से शक बहुत सी फिक्रें बहुत से ख्याल जहन में थे कि क्या होगा, क्या कोई है जो बचाएगा, क्या कोई है जो रहाई देगा, क्या कोई है जो दुआ को सुनता है, क्या होगा। तो आज अगर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा चलो मेरे पीछे आओ मेरी पैरोकारी करो मुझ पर ईमान रखो और वो खुद ही हमको रहनुमाई दे रहा है और तूफान में घिरे हुए हैं। अगर आज आप ऐसा महसूस कर रही हैं तो आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं जब हम तूफानों में गिरे होते हैं, जब हम इर्द गिर्द मुसीबत का सामना किए होते हैं, जब हमारे पीछे शैतानी फौजों का लश्कर होता है, जब हमारे आगे कोई रास्ता नहीं होता, तो वो इन तमाम हालातों में ऐसा महसूस होता है ठीक जैसे यहाँ पर शागिर्दों के जहन में चल रहा था कि ऐ साहिब जाग, हम मरे जा रहे हैं, हम हलाक हो रहे हैं, कश्ती पानी से भर गई है, कश्ती डूबना शुरू हो गई है और तू सुकून से सो रहा है। हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसा सोचते हैं कि खुदावन कहाँ है, वो सो गया है, खुदावन कहाँ है वो जवाब नहीं दे रहा, खुदावन कहाँ है मेरी मुश्किल में कौन मेरा साथी बनेगा, मेरी मुसीबत में कौन मेरा बचाने वाला होगा। अगर आज आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो बहुत दफा हमारी रहनुमाई करता है कि हम उस रास्ते पर उस समंदर के तूफान में से उसके साथ गुजरे ताकि वो हमारे ईमान को बढ़ाए। आपको खुदा के खादिम के बारे में बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें कि उसे खुदावन ने पहले ही बता दिया था। नए ऐहदनामा में इमाल की किताब उसका जब हम 20वां बाब देखते हैं तो यहां पर हमें एक बंदा मिलता है, वो बंदा जो इलम में, फहम में, दलेरी में और बहुत सी बातों में सरगर्म था, जो खुदा को पसंदीदा नहीं थी, लेकिन खुदा उसे बुलाता है, खुदा उसे बुलाता है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे खुदा खुद उसे कह रहा है कि तुझे तुझसे मैं बदला लूंगा, मेरे पीछे चल। इमाम की किताब उसका 20वां बाब जब हम देखते हैं 21वीं आयत से, तो यहां पर पालूस रसूल बुजुर्गों के सामने अपनी उस गवाही को पेश कर रहा है जो उसके साथ हुई और वो क्या कहता है, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करने और हमारे खुदावंद यीशु पर ईमान अमान लाना चाहिए। और 23-22 आयत में लिखा है, और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलम को जाता हूं, ना मालूम के वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सवाए इसके के रूह कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। ये कैसा बुलावा है कि तू मेरे पीछे चल, तू मुझ पर ईमान रख और मैं क्या करूंगा, तुझे सुख, तुझे चैन, तुझे बंगला, तुझे गाड़ी, तुझे जहाज, तुझे नया कोई वीजा या कोई और तेरी मुराद पूरी करने की बजाय क्या करूंगा, मैं तुझे बताता हूं तेरे लिए क्या तैयार है, कैद और मुसीबतें और कोड़े और धुतकारा जाना और मुसीबत का उठाना। अगर आप आज को आज के दिन खुदावंद आपको कहे मेरे पीछे चलो और तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुमको मकान नहीं मिलेगा, तुमको गाड़ी नहीं मिलेगी, तुमको कोई चीज नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी गवाही दो और तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमको दुख मिलेगा, तो कितने अपना हाथ उठाएंगे, 2, 3, 4, 5 अमीर है कि ये देखो देखी हाथ खड़ा नहीं है। तो पालूस रसूल के साथ क्या हुआ, खुदावंद उसे कहता है और वो क्या कहता है, मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके के अपने दौर और वो खिदमत जो खुदावंद में पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। तो शगेर तूफान में गिरे हुए हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, उनका जो माहौल है ये है कि वो मौत का सामना कर रहे हैं और उस मौत के सामने जब वो खड़े हैं तो यीशु के बकौल उनका ईमान कमजोर नजर आ रहा है। जब हम मुसीबतों में होते हैं दो बातें होंगी, जहां हमारा ईमान मजबूत होगा या हमारा ईमान कमजोर होगा। इसलिए ये वाक्य आज पढ़ाने का, सुनने का, कहने का मकसद क्या है? वो ये है कि जब जब हमारा ईमान कमजोर होगा, जब जब हम मुसीबत में गिरे हुए खुदावन को ऐसा सोचेंगे कि वो हमारी तरफ अपने कान नहीं लगाए, वो हमारी मुश्किलात से वाकिफ नहीं, वो सो रहा है, वो सोता भी हो तो वो सब कुछ जानता है। जबूर 121 में क्या आया है? अखियां चुकना हमेवल पहाड़ा, मदद ले मैं किसनु बुलाया, तेरा राखा ना कदी उग लावे, तेरे रब नु नींदर भी ना आवे। तो यीशु मसीह बहुत दफा हमारे साथ होने के बावजूद ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ नहीं। अगर आज आपकी जिंदगी में ये चल रहा है तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो आपसे ये सवाल करेगा, तुम्हारा ईमान कहां जाता रहा? क्योंकि ये शगिर्द अभी कुछ साल हुए हैं, यीशु के साथ हैं, उन्होंने लंगड़ों को चलते देखा है, अंधों को शिफा पाते देखा है, मुर्दे जिंदा होते देखे हैं, कोड़ियों को कोड़ से रहाई पाते देखा है, अजीब मौजजात के साथ लंगड़े, फालज और बहरे और टुंडे और बीमार और बदरू गिरफ्तार, और यहां तक के थोड़ी सी रोटी किसी छोटे बच्चे ने दी है, जो 5 रोटियों और 2 मछलियों का मुक्त सर सा हदिया, वो क्या करता है? यीशु लेता है और उसे चौगुना पचौगुना करके क्या करता है? उसमें से भी 12 टोकरे रोटियों के और मछलियों के क्या करते हैं जी? भर जाते हैं। सो दूसरी बात, हर एक इम्तहान इसलिए है ताकि उस इम्तहान में से हमारे लिए क्या हो जी? गवाही पैदा हो कि खुदा इस इम्तहान में मेरे साथ रहा, वो अगले इम्तहान के लिए हमको क्या कर रहा है जी? तैयार कर रहा है। और ऐसा ही हुआ, इस इम्तहान में से वो गुजरते हैं और अगला इम्तहान ग्रासीनियों के इलाके में उनको सामना है, उस बदरू गिरफ्त इंसान के साथ जो लश्कर से भरा हुआ है। तो दूसरी बात, हर एक इम्तहान के पीछे खुदा की मर्जी क्या है? कि हमें अगले इम्तहान के लिए तैयार करें, ताकि हम पिछले इम्तहान में अगर नाकामयाब हुए हैं तो अगले इम्तहान में वो क्या करे? हमें कामयाबी दे। तो क्या हुआ? ऐसा है हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी के शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। जिंदगी ऐसी लग रही है कि कोई अमन नहीं, कोई सुकून नहीं, ऐसी है जैसे वो गीत या किसी ने लिखा है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही काफी है। और बहुत दफा हम अपनी मसीही जिंदगी में ऐसा ही महसूस करते हैं। याद रहे, वो हमारे साथ है, हमारे साथ है। और आगे क्या हुआ? उसने हवा को डांटा और सब कुछ थम गया। मेरे साथ एक हवाला देखे इसी तरह से, पुराने अहदनामा में इम्साल की किताब उसका 30वां बाब, इम्साल 30 बाब, वहां पर अय्यूबा के बेटे की दुआ हमें नजर आती है और वो इस कलाम को करते हुए हमसे सवाल करता है कि हम जब तूफानों में, मुसीबतों में, परेशानियों में गिरे हो तो हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। हम बेवफा हो जाएंगे, खुदा कभी भी हमसे बेवफाई नहीं करेगा। हम उससे दूर जाएंगे, वो कभी भी हमसे दूर नहीं जाएगा। हम ये एहसास करेंगे कि तूफानों में घिरे हुए हैं, वो हमारे साथ नहीं, लेकिन वो उन तूफानों में हमें क्या करेगा? अमन बख्शेगा। इम्साल उसका 30 बाब, उसकी 4वीं आयत में यूं लिखा है, पहला सवाल, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसी को पता है कौन है जी? यीशु मसीह। वो आसमान से नीचे आया और फिर आसमान पर वापस चला गया। कौन है जी? यीशु मसीह। दूसरा सवाल, किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? यीशु मसीह। किसने? उसने हवा और तूफान को झिड़का और वो दोनों थम गए। किसने पानी को चादर में बांधा? यीशु मसीह, खुदावंद खुदा ने। पानी को चादर में बांधने से मुराद के पानी, जब हम पूरी दुनिया का दौरा करते हैं तो उसका 3% हिस्सा पानी है। उसकी हद बंदी करने वाला कौन है? खुदावंद खुदा कादर मुतले। और चौथा सवाल, किसने जमीन की हद ठहराई? यीशु मसीह ने। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। चाहे वो आसमान की हो, चाहे वो जमीन की, चाहे जमीन के नीचे और पानी में हर एक बसने वाली। पांचवा सवाल, अगर तू जानता है तो बताओ उसका नाम क्या है, उसके बेटे का नाम क्या है? कौन जानता है उसका नाम क्या है? यीशु मसीह, जिसे यहोवा यरी कहा गया है। जब हम किसी किस्म की मुश्किल में होते हैं तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है जी? यहोवा यरी है। जब हम दुश्मन से गिरे होते हैं तो वो यहोवा एदोनाई बन जाता है, हमारी कुवत का झंडा बन जाता है, वो यहोवा राफा बन जाता है, वो हमारी फतह का क्या बन जाता है? जीत बन जाता है। जब हम मुश्किल में हो तो वो हमारे दुश्मनों से बचाने के लिए हमारा अच्छा चरवाहा यहोवा राफा बन जाता है। इसलिए हमें भूलना नहीं, क्योंकि हम सब ये सवाल करेंगे, हम मर गए, हम बर्बाद हो गए और यीशु से कहेगा तुम्हारा ईमान कहां पर जाता रहा? इसीलिए उसने कहा, वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है, ये कौन है? हमने अभी अभी पढ़ा, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कौन है जो आसमान पर चढ़ा, वो कौन है जिसने पानी को थमा दिया, वो कौन है जिसने हवा को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया, वो कौन है जिसने जमीन की हद बंदी की? और यही सवाल, यही सोच उनके जहन में है कि ये कौन है जो हवा को और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। आज वो आपका और मेरा खुदा है। इसलिए इस वाक्य को याद करके, मुझे नहीं पता कि आपने कोई फैसला किया है और सोच रहे हैं कि वो फैसला गलत है, मेरी दुआ है कि आपके उस फैसले में खुदावंद आपको हिकमत और जनाई दे। हो सकता है कि आप बीमारी के तूफान में घिरे हुए हैं, खुदावंद आपकी बीमारी में आपके साथ है, वो कभी भी हमको तन्हा नहीं छोड़ता। चाहे हम मुश्किल में हो, उसे पता होता है कि जैसे उसे पता था कि लाजर मर गया है, वो वहां पर नहीं जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो लाजर को क्या करेगा? मुर्दों में से जिंदा करेगा। तो अगर आज हमारा ईमान डावाडोल है तो इस वाक्य को समझकर, सुनकर खुदावंद से शिकवा ना करें कि उसने क्या हमारे लिए जाल बिछाया है। ईमान में कमजोर ना हो कि वो हमें हलाक होने के लिए छोड़ देता है, बल्कि याद रखें, सवाल करें, ताज्जुब करें, हैरान हो कि वो कौन है जो सिर्फ ना हमारी जिंदगी के दुख बल्कि पानी और हवा भी उसके हुक्म को मानते हैं। तो आज जब घर में जाएं तो इस बात को याद रखें, अगर आप किसी तूफान में घिरी हुई हैं, किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, किस बीमारी में घिरे हुए हैं, किसी ऐसे हालात का सामना है, तो जरूर खुदावंद से कहे कि खुदावंद तू पानी को और हवा को हुक्म देता है तो वो रुक जाते हैं। तो जैसे खुदा ने भाई के लिए दुआ का जवाब दिया, मैं चाहता हूं एक और दुआ हम करेंगे। चर्च खुदा के फजल से जल्द मुकम्मल होगा आने वाले 2-3 माह में, लेकिन नए स्कूल की तामीर के लिए जल्द मंसूबा शुरू होगा, आपने उसके लिए दुआ करनी है। हमारी बात चल रही है खुदा के बंदा से, आप भाई का नाम क्या था जी, भाई का सीधा नाम, भाई अमीन के साथ बातचीत चल रही है कि बिल्डिंग की तामीर की जाए, और उसके बाद रुबाब के अबू और उनकी अम्मी से बातचीत चल रही है कि अगर ये खुदा की मर्जी है ताकि वहां पर स्कूल के और कमरे भरे। तो आप सब दुआ करें कि खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो तू अपने बंदा और बंदी के दिल में डाल, ताकि उनको वो जगह जो है वो चर्च के लिए हम सबको मिले, ताकि जब वो जो नक्शा तैयार किया गया है उसमें क्या होगा, ना सिर्फ स्कूल के कमरे बल्कि मुस्तकबिल में गलियां छोटी हो रही हैं, जगह कम हो रही है, अगर कोई हमारा प्रोग्राम हो तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, अगर कोई यीशु को छोड़ दुनिया को छोड़कर यीशु के पास जाता है तो वहां पर हम जनाजे की इबादत कर सकेंगे, वहां पर हम बहुत से दूसरे प्रोग्राम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह हो जाएगी। सो आप सब ने इस मकसद के लिए क्या करनी है, दुआ करनी है, याद रखते हुए कि वो पानी और हवा को हुक्म देता है तो वो थम जाते हैं। आपने अपनी बीमारी मुश्किल परेशानी जो भी है, उस बीमारी मुश्किल परेशानी को यीशु के नाम में कहें कि थम जा, रुक जा, बहाल हो जा, उठ जा, दूर हो जा। यीशु के नाम में इतनी क्या है जी, कुवत है, और आप अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत करेंगी करेंगे जब आप यीशु के नाम में खुद कहेंगे कि मेरा गैंतिया यीशु के नाम में जाता रहे, मेरे फेफड़ों में जो मसला है वो यीशु के नाम में जाता रहे, मुझे जो स्किन का मसला है वो यीशु के नाम में जाता रहे, मेरे जो गुर्दों में पत्थरियां हैं वो यीशु के नाम में जाती रहे, मेरे घर में अगर कोई बंधन लगे हुए हैं तो वो यीशु के नाम में टूट जाएं, और खुदावन का नाम क्या पाए जी, इज्जत और जलाल पाए। सो आए हम सब खुदा के रूह के दुआ करें। खुदावन खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदावन तू एक एक जिंदगी की जरूरत को पूरा कर, तू सब की जरूरतों से वाकिफ है खुदावन खुदा, चर्च के लिए जो खुदावन स्कूल को नया बनाने के लिए जगह की जरूरत है खुदावन खुदा, भाई के लिए खुदावन दुआ करता हूँ खुदावन खुदा, उसकी बीवी के लिए खुदावन दुआ करता हूँ कि खुदावन तू उन पर जाहिर कर, जैसे तूने खुदावन खुदा पत्रस पर और कर्नीलियस पर जाहिर किया, खुदावन तू उन पर जाहिर कर ताकि वो ये फैसला लें और इसमें तेरी पाक मर्जी पूरी हो, ताकि खुदावन आने वाली नस्लों के लिए खुदावन खुदा बेहतरीन जगह पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नौजवान सूरमा तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु की नासरी के नाम को मिले। खुदावन हर एक के दिल की दुआ को सुन कबूल कर, खुदावन यीशु मसीह नासरी के पाक और जलाली नाम में ये दुआ मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम की। जरा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं।